राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन विहारी, राधा वृंदावन विहारी राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय राधा मदन मोहन ललिता देवी, राधा मदन मोहन ललिता देवी। जय गिरी गोवर्धन गिरी गोवर्धन जय गिरी गोवर्धन। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस विराजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद की। जौम विष्णुपाद परमहंसरी व्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। व्रज भूमि वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की, कलयुग पावन श्री हरि नाम संकीर्तन की। ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिओटीज, ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिओटीज, ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिओटीज, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद छठा अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 55। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्यय आसित् स एव चिरात् इषसंगात् विलीयते। एषः प्रकृतिसंगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसित् स एव चिरात् इषसंगात् विलीयते। एषः प्रकृतिसंगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसित् स एव न चिरात् इषसंगात् विलीयते। प्रभुजी माता जी शब्दशः अर्थ एषः यः प्रकृति संगेन भौतिक प्रकृति के साथ संगति होने से पुरुषस्य जीव का विपर्ययः विस्मृति की स्थिति या विषम स्थिति आसित आ गई स वह स्थिति एव निसंदेह न नहीं चिरात दीर्घकाल तक ईश संगात परम ईश्वर की संगति से विलियते समाप्त हो जाती है। भाषांतर और तात्पर्य परम पूज्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा भाषांतर। चूंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है, अतएव वह बड़ी विषम स्थिति में होता है। किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए, तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। तात्पर्य, प्रकृति शब्द का अर्थ है भौतिक प्रकृति तथा पुरुष भी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बताने वाला हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान की स्त्री शक्ति प्रकृति के साथ अपना संसर्ग बनाए रखना चाहता है और इस भ्रम में रहकर कि वह प्रकृति का भोग कर सकेगा, अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से विलग कर ले, तो उसे बद्ध जीवन में बने रहना पड़ेगा। किंतु यदि वह अपनी चेतना बदल लेता है और परम आदि पुरुष से या उनके संगियों की संगति करता है, तो वह भौतिक प्रकृति के पाश से बाहर निकल सकता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मनुष्य को परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को उनके रूप नाम कार्य तथा लीलाओं के संदर्भ में केवल समझना होता है। इससे वह सदा भगवान श्री कृष्ण की संगति में बना रहेगा। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, इस प्रकार अपने इस स्थूल शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य दूसरा स्थूल शरीर नहीं ग्रहण कर सकता, अपितु आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करता है, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सके। इस प्रकार भौतिक शक्ति की संगति से उत्पन्न उसके कष्ट का अंत हो जाता है। संक्षेप में, जीव श्री भगवान का शाश्वत दास है, किंतु वह भौतिक जगत में आता है और पदार्थ पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण वह भौतिक स्थितियों द्वारा बंध जाता है। मुक्ति का अर्थ है इस झूठी चेतना को त्याग कर ईश्वर के प्रति अपनी मूल सेवा को पुनर्जीवित करना। अपने मूल जीवन में यह वापसी मुक्ति कहलाती है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सबका सहर्ष स्वागत। तो आज का जो श्लोक है, इसमें कुछ चर्चा करने से पहले यहाँ गिरिराज प्रभु और आदि केशव प्रभु श्याम रानी माता जी विशेष करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन से ही और उनके बारे में उनसे कथा सुनते सुनते हमारा बचपना गुजरा है और आज भी उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते तो आप सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करके जो कुछ वरिष्ठ भक्तों से सुना है उसको यहाँ पुनः चर्चा करने का प्रयास करूँगा। तो आज के इस महत्वपूर्ण श्लोक में वर्णन आता है, एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्यः आसित सैव नश्चिरात ईश संगात विलियते। तो भौतिक जो प्रकृति, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये प्रकृति क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है। तो भगवद गीता में वर्णन आता है, मय्याधीक्षणे प्रकृति सोयते सचराचरम। तो ये भगवान की शक्ति है जिसे हम स्त्रीलिंगी शक्ति भी कह सकते हैं। तो भगवान के दृष्टिपात से वो चलायमान होती है। और महत्वपूर्ण है कि इस भौतिक, इस श्लोक में जो वर्णन आता है और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक प्रकृति के संगति में जहाँ एक वर्णन आता है विपर्यः, हमें विस्मृति होती है, हम एक विपरीत अवस्था में चले जाते हैं जिसे माया भी कह सकते हैं। तो वो क्यों? तो भौतिक प्रकृति और जो पुरुष वर्णन आता है, तो पुरुष किसे कहा जाता है? जो परम भोक्ता है। तो परम भोक्ता है भगवान। तो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में प्रकृति और पुरुष इनकी चर्चा होती है जिसे वास्तविकता सांख्य तत्वत ज्ञान कहा जाता है। और पुरुष और प्रकृति इनका जो इनकी जो गुंतागुंत जैसे कह सकते हैं उसे एक तरह से माया कहा गया है, जिसमें कपिल और देवहूति उनका जो संवाद है इसमें इसका वर्णन आता है। तो एक तरह से देखा जाए कि जो तथाकथित स्त्री है और पुरुष है, जो एक तरह से इस भौतिक संसार में भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरह से जो परम पुरुष है, जो वास्तविक पुरुष है, उनका अनुकरण है। लेकिन वास्तविक भोक्ता भगवान है और हम खुद को, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर हम भोक्ता खुद को समझ रहे हैं तो यही हमारे इस संसार में बंधन का वास्तविक मूल कारण है। तो और यही हमारी जो विपर्यः, ये जो विस्मृति की स्थिति है, यहाँ वर्णन आता है, ये वास्तविक हमारी समस्या है। तो ये समस्या से ऊपर उठना, तो इसका वर्णन इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द है, ईश संगात। ईश संगात मतलब परम ईश्वर की संगति। और तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के भक्तों के संगति से ये जो विपर्य अवस्था है इससे हम उठ सकते हैं। तो इससे पहले हमें ये जानना है कि ये भौतिक प्रकृति क्या है। ये भौतिक प्रकृति भगवान की स्त्रीलिंगी शक्ति है। तो हम अगर इसको भोगने का प्रयास करेंगे तो ये वास्तविक माया है। कृष्ण भुलिया जीव भोग वांछा करे, जो वर्णन आता है। तो अगर हम भोग वांछा करेंगे तो हम फिर माया के वश में आ जाएंगे। तो वास्तविक हमारी स्थिति क्या है कि हम भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मतलब भगवान वास्तविक भोक्ता है ये समझकर हमें हमारा जीवन यापन करना, ये हमारी वास्तविक समस्या है। तो ये समस्या का समाधान हमें कहाँ प्राप्त हो सकता है? तो जब हम ईश संगात, भगवान का या भगवान के भक्तों का संग करेंगे। तो ये संग में हम भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भक्तों का संग, उनसे मार्गदर्शन, प्रसाद, ये सब पाते हैं। तो ये सब चीजें ईश संगात इसमें आते हैं। जैसे संत शिरोमणि तुकाराम महाराज कहते हैं, संग सज्जनांचा उच्चार नामाचा घोष कीर्तनाचा अहरनिशी, तुका म्हणे ऐसा साधनी जो राहे तो चिलाहे सुख समाधान। तो इस अभंग की शुरुआत तुकाराम महाराज करते हैं, संग सज्जनांचा, तो सज्जनों का संग मतलब भक्तों की संगति। तो भक्तों के संगति में क्या करना चाहिए? संग सज्जनांचा उच्चार नामाचा, तो वहां नाम का उच्चारण होना चाहिए। घोष कीर्तनाचा, कीर्तन मतलब सामूहिक कीर्तन या भगवान की कथाओं का कीर्तन। तुका म्हणे ऐसा साधनी जो राय, जो इस तरह से भक्तों के संगति में साधना करती है वही वास्तविक सुख और समाधान प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से हमारी वास्तविक जीवन की प्राथमिकता क्या है, वो हमारी इच्छा से प्रतीत होती है। हम कौन सी इच्छा करते हैं और हमारी इच्छा से ही हमारी जीवन की जो वास्तविक दिशा है वो फिर निश्चित हो जाती है। जैसे एक रूपकात्मक कथा मैंने सुनी है कि एक मल का कीड़ा होता है, तो जैसे एक लव स्टोरी सबको पता और पसंद रहती है, तो इनकी एक लव स्टोरी है। एक मल का कीड़ा है और एक मधुमक्खी है, तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों की वास्तविक स्थिति जो है वो अलग है, दोनों का परिवेश अलग है। मल का कीड़ा जो है वो विष्ठा में तृप्त है, संतुष्ट है, और वही उसकी पूरी दुनिया है। और मधुमक्खी जो जिस वातावरण में रहती है, फूलों में घूमती है, वहाँ की मधु प्राप्त करती है, तो उसका जो परिवेश है वो पूरा अलग है, जो सौंदर्यता से भरा हुआ है। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार तो कर बैठते हैं, लेकिन एक दूसरे को चाहते हैं कि ये मेरे संगति में मेरे साथ रहे। और मधुमक्खी देखती है कि ये जो मेरा प्रेमी है वो तो इस स्थिति में है कि मैं वहाँ नहीं रह सकती, तो किसी कारण से उसको वहाँ से निकालना है। तो फिर मधुमक्खी कहती है कि आप क्या इस मल में पड़े हो, कितनी दुर्गंधी है, और क्या आपका खाना है, ये सब बहुत गंदा है, आप चलो मेरे साथ चलो देखो। लेकिन मल का कीड़ा जो पूरा उसका जिंदगी उसके लिए वही सब कुछ है, तो सोचते नहीं यही तो जिंदगी है, आप आ जाओ और देखो ये क्या स्वाद है इधर। तो कुछ कारणवश मधुमक्खी उसको बोलती चलो आप आके तो देखिए, फिर भी वो अपने नाक में थोड़ा सा मल ठूस के फिर वो मधुमक्खी के साथ जाता है। फिर भी मधुमक्खी उसको फूलों का स्वाद मधु देने का प्रयास करती है, फिर बोला हाँ वो तो सेम है हमारी और स्थिति। फिर वो मधुमक्खी देखती है कह रही इसके नाक में थोड़ा अंश है, तो फिर उसको नहलाती है मधुमक्खी और फिर बोलती है आप थोड़ा सा सूंघो, फिर वो स्वाद जो है प्राप्त करता है और मधु प्राप्त करता है। तब उसको वास्तविक समझ में आता है कि मैं जहाँ रहता था उससे बहुत कई गुना अधिक यहाँ का वातावरण सुंदर, यहाँ का स्वाद अलग है। तो इसी तरह से आचार्य बताते हैं, इससे मतलब यह हमारी प्रेम कहानी है, ये भव संसारे पोड़िया मानव नाही का दुखे रशेष, साधु संग करी जदि भज हरि तबे होय अंत क्लेश। ये भव संसारे पोड़िया मानव, मतलब जो मल का कीड़ा मतलब हम है, ये भव संसारे पोड़िया मानव, हम इस भव संसार में पड़े हैं। तो ये भव संसारे पोड़िया मानव नाही का दुखे रशेष, अगर इस मर्त्य संसार में हमने जन्म लिया है तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। साधु संग करी जदि भजे हरि तबे होय अंत क्लेश, जब हम भक्तों का संग करेंगे और संगति में हरि भजन करेंगे तभी होय अंत क्लेश। जैसे वो मधुमक्खी के साथ ओमल का कीड़ा संग करता है और उनके साथ उसके साथ, तो मधुमक्खी उस भक्तों का प्रतीत है जो हमें उस भौतिक संसार से मल के कीड़ा जो है उसको उठा के फिर उस परिवेश में लेके जाते हैं। तो ये सब भक्तों के संगति से संभव है। तो बहुत सारे आचार्यों में आचार्यों की कथा है, वर्णन है कि उनकी संगति से कैसे लोगों का जीवन जो बदला है, तो यही वर्णन इस श्लोक में आता है, ईश संगात। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब अपना प्रचार कर रहे थे, अंग्रेजों का समय था, तो अंग्रेजों को लगने लगा कि ये जो कर रहा है कुछ तो अलग कर रहा है, हमारा जो पूरा साम्राज्य को नींव हिला देगा, शायद हमारे विरुद्ध कुछ कटकारस्थान कर रहा है। तो एक अंग्रेज एक अफसर को फिर भक्तों का परिवेश धारण करके फिर बोलता है कि जाओ और देखो उनका क्या उद्देश्य, वो क्या करते हैं, उनका क्या मिशन है। तो ये जानने के लिए एक अफसर फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास आता है, उनके मठ में आता है और उनसे श्रवण करता है। और बाद में जब वो श्रवण करता है तो भूल जाता है कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, उन अंग्रेजों की। तो वास्तविक जीवन क्या है कि भगवान की भक्ति करना, भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन से अपना जीवन यापन करना और अपनी जीवन का जो वास्तविक समस्या है उनका समाधान प्राप्त करना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के संपर्क में आके वो फिर पूरे समय के लिए वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का आचरण प्राप्त करता है। तो ये ईश संगात से संभव है। जैसे एक स्त्री रूपा जी से मिली। उससे पहले भक्त बहुत प्रयास कर रहे थे कि उसको कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उसका उसको लाया जाए, लेकिन वो भक्तों से कहती है कि नहीं, मैं आपका जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका जाप है कीर्तन है मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। लेकिन कुछ कारणवश वो भक्त उस स्त्री को प्रभुपाद जी से मिलाते हैं, तो प्रभुपाद जी उसको क्या करते हैं, फिर कुछ प्रवचन या कथा नहीं सुनाते, उसको पहले रसगुल्ला खिलाते हैं। तो उसको रसगुल्ला इतना अच्छा लगता है, और दो देते हैं, और वो खाती है, और दो देते हैं, वो खा लेती है। फिर प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि ये प्रसाद की महिमा है, जैसे प्रसाद के बारे में मुझे वर्णन आता है कि तुकाराम महाराज कहते हैं, देवाचा प्रसादे करारे भोजन ब्रह्मादिकांशी दुर्लभ है उच्चिष्ट। मतलब जो भगवान का प्रसाद है ब्रह्मादिकांशी दुर्लभ उच्चिष्ट, मतलब भगवान का जो उच्चिष्ट है वो ब्रह्मादि जैसे देव है उनके लिए भी दुर्लभ है। तो प्रभुपाद की कृपा से ये भी ईश संगात ही है कि प्रसाद का संग हम सबसे ज्यादा पाते हैं। तो ये रसगुल्ला के माध्यम से फिर उसको बहुत लगा हो गया, और बाद में श्रील प्रभुपाद उसको बताते हैं कि इस रसगुल्ले से भी ज्यादा मिठास जो है भगवान के नाम में है। अगर आप ये नाम लेने का प्रयास करोगे तो आपका जो जीवन है वो तो वास्तविक रूप से यशस्वी हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भक्तों के संग में आके प्रसाद ग्रहण करके फिर भक्ति मार्ग का जो है आचरण करते हैं। तो जिस तरह से हम ये जो माया मुग्ध जीव है जो भौतिक संसार में है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो बहुत बार हमें लगता है कि हम समस्याग्रस्त है, या हमारी जो वास्तविक समस्या है, हमारे जो दैनिक भौतिक जो भी कुछ कठिनाई है वो समाप्त तो होने के बाद हम भक्ति प्रारंभ करेंगे। लेकिन भक्तों के संग में आने से क्या होता है, भौतिक समस्याएं दूर, जैसे मैंने बहुत बार गिराजपुर से सुना है कि भक्तों के संग में आने से हमारी चेतना ऊपर उठती है। जैसे बहुत बार जो उदाहरण दिया जाता है कि जब हम नीचे से इमारत देखते हैं तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब हम एरोप्लेन में होते हैं तो वही इमारतें छोटी हो जाती है, इमारतों का साइज कम ज्यादा नहीं होता। वैसे हमारी जो भौतिक समस्या है वो कम ज्यादा होंगी नहीं, लेकिन भक्तों के संग में आने से हमारी चेतना इस तरह से उठेंगी कि हमारी जो भौतिक समस्याएं हैं वो छोटी लगने लगेंगी। जैसे कोई चींटी है वो चांद को कैसे छू सकती है, नहीं छू सकती, लेकिन वही चींटी अगर शिव जी के सर में जाके आश्रय ग्रहण करे तो शिव जी को चंद्रमौली कहा जाता है क्योंकि उनको उनके सर पे चंद्रमा है, तो सहजता से चंद्र को प्राप्त कर सकती है। उसी तरह से भगवान के भक्तों के संग में हम हमारे जीवन की जो परिपूर्णता है प्राप्त कर सकते हैं। एक पौराणिक कथा है जहाँ वर्णन आता है कि एक मधुमक्खी एक कमल पुष्प में मधु ग्रहण करते हुए पुष्प बंद हो जाता है, और पार्वती माता प्रतिदिन शिव जी को जो कमल पुष्प है वो अर्पण करती थी। तो वही जो मधुमक्खी कमल पुष्प में बंद है तो वही पुष्प एक बार माता पार्वती शिव जी को अर्पण करती हैं, और फिर शिव जी को अर्पण करने के बाद उसको वो निर्माल्य गंगा में बहाया जाता है, और फिर गंगा में वो कमल पुष्प बहाने के बाद वो जो मधुमक्खी अंदर थी वो चतुर्भुज रूप प्राप्त करके सीधा वैकुंठ धाम चली जाती है। तो हम देख सकते हैं कि वो पुष्प में बंद मधुमक्खी एक तो माता पार्वती का संग प्राप्त करती है, फिर शिवजी का संग प्राप्त करती है, और बाद में गंगा माता का संग प्राप्त करती है, और संगति से वो सीधा वैकुंठ धाम पधारती है। जैसे एक बार का प्रसंग है कि नारद मुनि भगवान को कहते हैं कि ये जैसे कहते हैं हम साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, तो ये लव मात्र साधु संग का महत्व क्या है, नारद मुनि भगवान को पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो जो केचुआ है ना उसको जाकर मिलो और उसे प्रश्न पूछो कि ये लव मात्र साधु संग क्या है, तो भगवान का आदेश है। तो इसीलिए नारद मुनि उस केचुओं के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये लव मात्र साधु संग का महत्व क्या है, तो केचुआ जो है वो सीधा अपना देह त्याग करता है, नारद मुनि घबरा जाते हैं, ये तो बहुत जानलेवा प्रश्न है, मैंने क्या पूछा। और अपनी इस अवस्था को जाके फिर भगवान को कहते कि आपने तो बताया किच्छू के पास जाको, जाओ और पूछो साधु संघ का महत्व, लव मात्र साधु संघ का महत्व क्या है, लेकिन उसने तो अपना शरीर का त्याग किया। भगवान कहते ठीक है, अभी वो जो बछड़ा दिख रहा है ना, एक और प्रयास करो और बछड़े को जाको पूछो ये लव मात्र साधु संघ का महत्व क्या है। तो घबराते हुए फिर नारद मुनि चले जाते हैं, क्योंकि पता है कि अगर एक को प्रश्न पूछा तो उसने शरीर त्याग किया, अभी इसका क्या होगा। फिर बछड़े को जाके जब प्रश्न पूछा जाता है कि ये लव मात्र साधु संघ का महत्व क्या है, तो बछड़ा भी शरीर छोड़ देता है। अभी तो नारद मुनि घबरा गए थे, बहुत ही कातिलाना ही प्रश्न है कि जिसको पूछता हूं वो अपना शरीर छोड़ देता है। फिर भगवान के पास आते हैं और पूछते कि उसने भी शरीर छोड़ा है, भगवान ये आपने कौन सी विपदा में मुझे डाला है कि लव मात्र साधु संघ का मैंने एक साधा प्रश्न आपको पूछा है, लेकिन आप मुझे ऐसे ऐसे जीवों का जान जा रहे हैं। तो भगवान कहते एक आखिरी प्रयास आप करो, वो जो राजकुमार देख रहा है ना उसके जाको पूछो कि लव मात्र साधु संघ का महत्व क्या है। फिर नारद मुनि भगवान का आदेश मानते हुए वहां जाते हैं और उनसे पूछते हैं। फिर वो जो राजकुमार है वो बताता है कि लव मात्र साधु संघ से एक केचुआ बछड़ा बन गया, और एक बछड़ा जो है आज उसका रूपांतर हुआ कि वो एक राजकुमार बन गया है, और उसकी जो एक तरह से देखा जाए जो निम्नतम योनि उनमें चेतना का अंतर है, तो एक तरह से चेतना का विकसन भी हम देख सकते हैं और उसका परिवर्तन भी देख सकते हैं, किस तरह से एक केचुआ है जो राजकुमार में परिवर्तित हुआ और उसके बाद उसको भगवान की शुद्ध भक्ति मिली और भगवत धाम चला गया। तो ये साधु संघ का महत्व है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का जो स्थापना की, तो बहुत बड़े मंदिर है हमारे, जैसे कृषि क्षेत्र है, पाठशालाएं हैं, गुरुकुल है, तो इसका उद्देश्य क्या है। जैसे आज मतलब हम कुछ समय पहले बच्चों को, स्कूल के बच्चों को हम वृंदावन में लेके गए थे, तो हम कभी जाते नहीं, मैं भी पहली बार प्रेम मंदिर में गया था, तो बहुत सारे मंदिरों में बच्चों को लेके घूमा, लेकिन बहुत जगह ऐसा अनुभव किया कि हमारे मंदिर सेल्फी पॉइंट बन गए हैं। तो विशेष करके प्रेम मंदिर में देखा कि ना वहाँ कथा थी ना वहाँ कीर्तन था, लेकिन जो कोई आ रहा था वो अलग अलग जगह पे सेल्फी ले रहे थे। हम यहाँ भी देखते हैं कि लोग आते हैं तो यहाँ हमारे बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं जो उनको कथा कीर्तन के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन बहुत सारे मंदिर सेल्फी पॉइंट जो बन गए हैं, लेकिन वास्तविक जो मंदिर का उद्देश्य क्या है, भगवान का दर्शन, लेकिन उससे भी ज़्यादा भक्तों का संग और भक्तों के संगति में कथा और कीर्तन। तो और कथा और कीर्तन से हमारे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो स्पष्ट होता है। जैसे हम देखते हैं कि नहीं तो हम हमारे नित्य कार्यकलापों में हम भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। जैसे मोबाइल का उदाहरण हम हमेशा देखते हैं कि हम बहुत बार उसका उपयोग करते डिस्चार्ज होता है, और हम इतने कॉन्शियस रहते हैं उसके चार्जिंग के बारे में, थोड़ा सा भी अगर उसको कम हो गया तो हम चार्जर को लगा देते हैं, और उसके बाद और सपोर्टिव चार्ज बैटरी भी रखते हैं। तो वास्तविक ये मंदिर या जो भगवान का जहाँ भी आश्रय लेते, एक तरह से हमारी चेतना को चार्ज करने के स्थान है। तो यहाँ हम वास्तविकता से हम खुद को चार्ज करने के लिए जाते हैं, और यही मंदिर का वास्तविक उद्देश्य कि हमारी चेतना जो हम भूल गए कि हम भोक्ता नहीं है। तो ये जो हमारी विपरीय स्थिति है, हमारी जो विस्मृति है, जो हम भूल गए और हम खुद को भोक्ता कहते हैं, तो इसको सुधारना है। और भगवान वास्तविक जो पुरुष है वो भोक्ता है, ये स्थिति को अगर हम पुनर्जागृत करना है तो ये भक्तों के संग में शक्य है, इसके अलावा नहीं। तो यही मनुष्य जीवन है। हम इसके बाद जैसे एक उदाहरण आता है, कथा आती है छोटी, जैसे एक राजा है, एक राज्य है, तो वहाँ एक रूपकात्मक कथा है कि वो राज्य ऐसा था कि वहाँ हर साल में, एक साल में राजा का परिवर्तन हो जाता था, दूसरा राजा आता था, और फिर जो राजा निवृत्त हुआ है उसको क्या करते थे, एक ऐसे टापू पे जहाँ चारों ओर पानी है और बीच में जंगल है और वहाँ ही स्थिर पशु पक्षी प्राणी हैं, तो वहाँ छोड़ा जाएगा। और राजा का डेस्टिनेशन ऐसे, 1 साल अगर उसने राज्य का उपभोग किया, राजा बना, तो उसका डेस्टिनेशन है वो टापू पे जाना और वहाँ अपना जीवन यापन जो है समापन करना। तो बहुत सारे राजा आए, राज्य का उपभोग करते करते फिर जैसे जैसे वो साल गुजरता जाता था वो चिंतित हो जाते थे कि आगे जाके हमारा वो टापू में क्या होगा, वहाँ तो हिंस्र पशु पक्षी है तो मेरा अंत कैसा होगा। तो इसके बारे में चिंतित अवस्था में फिर वहाँ जाके उनका जो अंत अंत हो जाता था। लेकिन एक राजा आता है, लेकिन वो पूरा साल अच्छे से आराम से अपना राज्य जो है वो संभालता है और कोई उसका राज्य उसका जो कालावधि वो समाप्त होने पर भी वो कभी भी चिंतित नहीं होता। तो कुछ व्यक्ति उनको पूछते हैं कि हमने इतने सारे राजाएं देखे, लेकिन वो जैसे जैसे उनका समय गुजरता जाता था वो चिंतित होते थे, लेकिन आप चिंतित क्यों नहीं हुए, आपका तो अभी समय आ गया है। तो फिर वो जो राजा जो बुद्धिमान थे वो बताते हैं कि मुझे जब ये राज्य मिला तो सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है, मेरा गंतव्य कहाँ है, तो टापू पे तो मुझे छोड़ा जाएगा, तो मैंने उसके बारे में देखा क्या है, तो उधर जाने के बाद मुझे मेरा जीवन यापन कैसा करना है, तो उसके लिए मेरी मुझे कौन सी सुविधाएं लगेगी, कौन सी समस्या है जिसको मुझे दूर करना है। तो यहाँ मैं राजा हूँ तो मैंने वहाँ की सुधारना प्रारंभ की है, तो अब मुझे जहाँ जाना है मैंने उसके हिसाब से वहाँ का वातावरण बदल दिया है, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तो इसी तरह से हम थोड़ा समय के लिए यहाँ के राजा हैं, वो 1 साल के थे, हम 40, 50, 60, 70 साल के, तो यहाँ हमें बैठ के हमारा जो गंतव्य स्थान मृत्यु के बाद क्या है उसकी स्थान निश्चिति करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, भक्तों के संगति में आके हम उस भगवान का धाम कैसा है उसमें जाके हमें क्या करना है उसका प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त करेंगे। तो अलग अलग सेवाओं के माध्यम से हम यही कहते हैं कि हमें वहाँ जाके भी क्या करना है, कीर्तन करना है, भगवान की सेवा करना है, तो इसका प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से वो राजा अपने इस जीवन में अपने बाद के जीवन की पूर्व तैयारी कर रहा था। तो हमारे जीवन की जो पूर्व तैयारी है ये भक्तों के संगति में हम अच्छे तरह से करेंगे, नहीं तो मृत्यु के समय सब हमारा जो है वो निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह से जो भक्तों की संगति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे हम यहाँ और यही हमारे जीवन का वास्तविक धन भी है। जैसे वर्णन आता है कि एक राजा था और वो राजा अपन राज्य करते समय एस्ट्रोलॉजर की हमेशा मदद लेता था, और वो चैतन्य महाप्रभु के समय का काल था, तो हर दिन वो अपना भविष्य जानता था या हमारे राज्य में कौन सा धनी व्यक्ति आने वाला है, क्या कौन से रास्ते पे आने वाला है, क्या वो एस्ट्रोलॉजर बताता था कि आपके राज्य में कौन सा धनी व्यक्ति आएगा, कौन से रास्ते से आएगा। तो फिर वो राजा है वो प्रयास करता था कि किस तरह से इसका उपयोग हमारे राज्य के विकास के लिए कर सके अगर कोई धनी व्यक्ति आ रहा है। तो एक बार एक एस्ट्रोलॉजर उनको बोलता है, अद्वैत आचार्य जो है एक रास्ते से श्रीमद् भागवत ग्रंथ लेके पधार रहे थे, और वो एस्ट्रोलॉजर उस राजा को बताता है कि मैं भविष्य देख रहा हूं कि इस ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति एक रास्ते से आ रहा है, इस ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ कि इस ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति, अभी तक तो ऐसी भविष्यवाणी मैंने आपसे नहीं सुनी थी, चलो मिलते हैं उनसे। तो फिर जब वो मिलते हैं तो अद्वैत आचार्य थे और उनके पास श्रीमद् भागवत का ग्रंथ था। तो हमारा वास्तविक धन जो क्या है, भक्त हमें प्रदान करते हैं, भागवत है, भक्त है, भक्ति है। जैसे प्रभुपाद जी को भी एक व्यक्ति, जब प्रभुपाद बहुत 40 रुपए लेके पाश्चात्य जगत में गए, प्रचार किया, और बहुत कम साम्राज्य में कुछ बिजनेसमैन ने उसको अलग तरह से देखते कि प्रभुपाद ने एम्पायर खड़ा किया, तो उसको बिजनेस स्ट्रेटेजी भी, प्रभुपाद किस तरह से बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कि ऐसे भी कुछ लोगों ने उनका स्टडी किया है। तो एक वो धनी व्यक्ति थे, वो प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि आपके जो आपने इतना कम समय में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया उसका रहस्य क्या है, तो प्रभुपाद एक ही बताते हैं कि भगवान और भक्त। कृष्ण और मेरे भक्त। तो प्रभुपाद भी बता दे कि उनको जो शिष्य मिले वो इस तरह से मिले कि उनका उनका जो कार्य, जो भगवान का, उनके गुरु महाराज का आदेश है वो पूर्ण करने के लिए उनका जो पूरी तरीके से समर्पण था। जैसे वर्णन आता है कि जो हंसदूत प्रभु जिन्होंने ट्रांसलेट करने के लिए बुक्स, प्रभुपाद के पास बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट थे, तो हयग्रीव प्रभु, तो उनके बारे में बताते किस तरह से हयग्रीव प्रभु ने उनको ट्रांसलेशन में मदद की। तो ऐसे बहुत सारे भक्त जो प्रभुपाद को मिले, तो प्रभुपाद बोलते कि मेरे जो इस्कॉन का यश है उसका श्रेय भगवान को है और भक्तों को है। तो प्रभुपाद भी इस तरह से कहते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग एक बार कोई प्रभुपाद जी से मिला और मंदिर देखा, बहुत अच्छा मंदिर है, लेकिन प्रभुपाद जी को कहते कि आपके मंदिर में एक त्रुटि है। बोले अरे इतना सब है तो त्रुटि क्या निकल, आपके मंदिर में वो घंटा नहीं है बजाने के लिए, बेल नहीं है। वो प्रभुपाद थोड़े हंसने लगते हैं और बोलते ठीक है एक घंटा नहीं, लेकिन हमारे मंदिर में जितने भक्त है वो घंटा से कम नहीं है। फिर सबको बुलाते हैं और बोलते हमारे मंदिर में घंटा नहीं, लेकिन हमारा वास्तविक घंटानाद क्या है? तो सभी भक्त जोर से हाथ ऊपर करके बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद बोलती है कि ये वास्तविक घंटानाद है और यही हमारा भक्तों के बीच जो धन है, ये वास्तविक धन है। और यही भागवत में एक तरह से वर्णन आते हैं, भागवत के पहले स्कंद से लेकर अगर 12वें स्कंद तक जाएंगे तो एक तरह से भक्तों की महती है। जैसे हम देखते हैं कि पहले और दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कि व्यास महर्षि हैं, एक तरह से भागवत और वेदों का संकलन करते हैं, लेकिन उनकी जो अवस्था है, जो भ्रमित अवस्था है, वो संतुष्ट नहीं है पूरे वेदों को संकलित करने के बाद भी। और कंपैरेटिवली अगर हम देखे जाए तो वो शक्त्यावेश अवतार है व्यास महर्षि, और गौतम बुद्ध वो भी एक शक्त्यावेश अवतार ही है। तो उनके भी पिताजी ने उनको इस तरह से रखा था गौतम बुद्ध को कि वो भौतिक जीवन की जो दुखद स्थिति वो न देखे, नहीं तो उनके बारे में भविष्यवाणी थी कि वो संसार छोड़ के चले जाएंगे। तो भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, लेकिन लीला का भाग अलग है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा कंपैरेटिव यह बताना चाहूँगा कि दोनों की स्थिति एक है, दोनों शक्त्यावेश अवतार है, लेकिन अपने इस विपरीत स्थिति में व्यास महर्षि नारद मुनि का उपदेश प्राप्त करते हैं और फिर अपने समस्या, अपनी जो विपरीत स्थिति है उसका समाधान उनको मिलता है और भागवत का निर्माण हो जाता है। और वही अगर हम देखा जाए तो गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वो एक तरह से किसी भक्तों के संगति में नहीं गए, उन्होंने अपनी साधना की, लेकिन उनसे जो निर्माण हुआ वो था एक तरह से मायावाद या शून्यवाद जिसे हम कहते हैं। तो स्थिति समान थी, लीला का भाग अलग है, लेकिन एक भक्तों की संगति का प्रभाव देखा जाए तो नारद मुनि के संग में आके अपनी जो वास्तविक स्थिति को सुधार के भागवत का निर्माण हुआ। तो ये गुरु आश्रय या भक्तों का आश्रय का महानता है। तो मैंने शुरू में कहा कि हमारी अवस्था कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हम हो, हमें भगवान का और उनके भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। जैसे मैं बहुत बार तुकाराम महाराज का अभंग का उदाहरण देता हूँ। जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं कि पहाते पांडव अखंड वनवासी, मतलब पांडव जो है वनवासी थे, समस्याग्रस्त थे, लेकिन भगवान को नहीं भूले। पहाते पांडव अखंड वनवासी, परित्या देवासी आठवी थी, भगवान को नहीं भूले। प्रह्लादासी पिता करी तो जाचनी, परी तो स्मरे नारायण। प्रह्लाद महाराज को बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन वो स्मरण करते रहे। क्यों स्मरण करते रहे? क्योंकि उन्हें भी नारद मुनि का संग, कयादु के गर्भ में जब थे तो उन्होंने भागवत श्रवण किया था। सुदामा ब्राह्मण दरिद्र पीड़िला नहीं विसरला पांडुरंगात। सुदामा ब्राह्मण थे जो दरिद्र थे, स्थिति अलग थी, लेकिन वो भगवान को नहीं भूले। तो इसी तरह से अर्जुन समस्याग्रस्त स्थिति में था, समस्या दूर होने के बाद मैं गीता सुनूंगा ऐसा नहीं उन्होंने कहा, वो समस्या के अवस्था में उन्होंने गीता का आश्रय लिया। समस्या के अवस्था में ही परीक्षित महाराज ने भागवत का आश्रय लिया। तो इस तरह से हमारी स्थिति कोई भी हो, हमें भगवान और भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। तो बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में वर्णन आते हैं, कथाएं आती है। जैसे कोई पापी व्यक्ति था, तो जब उसका मृत्यु पास में आ गया तो कुछ कारणवश वो यमदूतों को देख पाया, तो उसने कोई भक्त आजू बाजू नहीं थे, तो उसने तुलसी को गले लगाया। अभी तुलसी को गले लगाया तो यमदूत रुक गए, उसको नहीं ले जा सकते थे। फिर वो यमराज को पूछते हैं, यमराज भी देखते हैं कि अपना पूरा कैलकुलेटर निकाल के देखते हैं कि अभी क्या करें, तुलसी इसके पास है, इसने उसको पकड़ के रखा है, तो अभी मैं तो इसको नहीं ले जा सकता, तो अभी इसका समाधान क्या है। तो फिर यमराज ब्रह्मा जी को पाचारण करते हैं कि अभी क्या करूं, इसने तुलसी का संग प्राप्त किया है। तो ब्रह्मा जी भी अपने चारों सर से उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते। फिर पंचमुखे महादेवा, फिर महादेव को पाचारण किया जाता है, महादेव भी कुछ कर नहीं पाते कि अभी इसका डेस्टिनेशन क्या होगा, तुलसी महारानी को तो उसने पकड़ के रखा है, तो अभी क्या करेंगे, अभी हमें विष्णु के पास जाना पड़े, उनको बुलाना, लेकिन उनको तो बुला नहीं सकते, तो अभी क्या करेंगे, तो इसको लेके जाते हैं वहाँ। तो इस तरह से फिर ये पापी व्यक्ति जिसने तुलसी महारानी को पकड़ के रखा है, तो फिर उसको एक पालकी में लेके जाते हैं और भगवान विष्णु को पूछते कि क्या इसका डेस्टिनेशन क्या है। तो बोला डेस्टिनेशन क्या है, तो आपने सिद्ध कर दिया है कि अगर कोई शुद्ध वैष्णव या भक्त है, तुलसी महारानी जैसा कोई भक्त है, अगर उसका आश्रय किसी ने ग्रहण किया तो यमदूत, यमराज, ब्रह्मा, शिव सब मिल के पालकी में उसे मेरे पास लेके आते, तो यही उसका डेस्टिनेशन है। तो इस तरह से तो शिव जी भी कहते हैं, वर्णन आता है, मुझे श्लोक का नंबर और याद नहीं, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशीष, बराबर है प्रजी श्लोक। तो जो मृत्यु के पास है उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, भगवत संगी संगस्य, तो भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना। तो इस तरह से व्यासदेव संग करते हैं नारद मुनि का। स्कंद तीसरे में वर्णन आता है, ठीक है संग है, लेकिन उस साधु संग में हमें क्या करना चाहिए। तो कपिल मुनि और देवहूति के संवाद में वो श्लोक आता है, सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रुत्कर्ण रसायन कथा। तो भगवान की संगति तो है, भक्तों की संगति है, लेकिन उस संगति में क्या करना चाहिए, तो भगवान की जो कथा है उनका श्रवण करना चाहिए। तो नहीं तो ऐसा नहीं कि बाह्यकारी दृष्टि से हम भक्त हो सकते हैं, दिख सकते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि माथे तिलक कंठी माला आछे पीछे सुंदर वाला, ऐसा वर्णनों करते हैं, इसका वर्णन करने का कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविक अगर हम भक्तों के संग में है तो हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है। जैसे प्रभुपाद की कथा में आते हैं कि प्रभुपाद जी कभी कोई कथा कर रहे थे तो उनके शरीर पे आके एक मच्छर बैठ जाता है। तो वास्तविकता से देखा जाए तो प्रभुपाद जी के सबसे निकट वो मच्छर था, लेकिन वो क्या कर रहा था, प्रभुपाद जी का खून चूस रहा था। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये देखो ये मेरा संग कर रहा है, लेकिन ये वास्तविक संग है क्या, नहीं, क्योंकि खून चूस रहा है। तो भक्तों के संग में अगर हम भक्तों की निंदा करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, गुरुजनों का अपराध करते हैं, तो वास्तविक संग नहीं है। तो फिर सकारात्मक दृष्टिकोण से योग्य मार्गदर्शन में संग करना, यह है। तो जैसे तीसरे स्कंद में बताया है कि साधु संग में क्या करना है, कथा करनी है, लेकिन कैसा करना है वो वर्णन चौथे स्कंद में आता है। फिर जैसे ध्रुव महाराज दृढ़ता से, ध्रुव मतलब दृढ़ता, तो गुरु महाराज का मतलब नारद मुनि का वो सुनते, फिर जो तपस्या है वो अच्छे से करते हैं। और तो चौथे स्कंद में वर्णन आते कि ध्रुव महाराज अपने जीवन की जो वास्तविक परिपूर्ण अवस्था है उसको प्राप्त करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो पांचवें स्कंद में वर्णन आता है कि अगर ये संग मिला है उसमें क्या करना है, कैसे करना है, अगर हमने ये संग को छोड़ा एक तरह से, तो इसका वर्णन एक तरह से पांचवें स्कंद में आता है। जैसे भरत महाराज की कथा हम देखते हैं, वो राजर्षि थे लेकिन भक्तों के एक तरह से समुदाय में थे, वो छोड़ते हैं, वन में जाते हैं और अकेले रहते हैं, फिर वो हरिण से आसक्त होते हैं। तो एक तरह से वो संग छोड़ के जाते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले रहने का प्रयास करते हैं, तो फिर उनका एक तरह से पतन हो जाता है। लेकिन फिर हरिण की अवस्था में फिर उनको वो संग, भक्तों का संग मिलता है, फिर उनसे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और जड़ भरत के रूप में फिर अपना संग रघुगण महाराज को देते हैं। तो इसका सुंदर वर्णन है जो पांचवें स्कंद में हमने चर्चा किया है भागवत कक्षा में, रघुगणे तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद रजोभिषेकम। तो इस श्लोक में जड़ भरत फिर रघुगण महाराज को बताते हैं कि हम कोई भी बहुत बड़ी तपस्या करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे या संन्यास ग्रहण करे, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी चीज क्या है, विना महत्पाद रजोभिषेकम। तो जो भगवान के भक्त है उनकी जो चरण धूलि, उनसे अभिषेक करना। उनसे अभिषेक करना वास्तविकता मतलब उनसे कथा कीर्तन सुनना, इस तरह का वर्णन है, लीला कथा कीर्तन सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही जड़ भरत फिर एक तरह से पांचवें स्कंद में भगवान के जो भक्तों की महति का वर्णन करते हैं, और छठे स्कंद में जो हम अजामिल के बारे में सुन रहे हैं, और सातवें स्कंद में अगर हम देखा जाए तो ये संग से हमें क्या प्राप्त होता है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं अजामिला पाप राशि नामे तारी लतयाशी। तो अजामिल का हम चरित्र देखते हैं, उसका भगवान के नाम से रक्षण हुआ, लेकिन वो क्यों हो पाया, क्योंकि जब उसके घर से कोई साधु गुजर रहे थे तो फिर उसको विनती करते उसका जीवन देख के कि आप आपके पुत्र का एक नारायण एक भगवान के ऊपर नाम तो रखो। फिर वो साधु के संगति के प्रभाव से अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखता है, और जब वो नाम नारायण ऐसा रखता है तभी एक तरह से देखा जाए तो उसका सभी जो पाप है उसके नष्ट हो जाते हैं, और आगे जाके अपने पुत्र को जब भी वो नारायण नारायण पुकारते एक तरह से उसकी वो तपस्या थी, उसकी वो साधना थी। तो उस फलवश उसको फिर विष्णु दूतों का संग मिलता है, और इस विष्णु दूतों के संग के माध्यम से फिर उसे भगवान प्राप्त हो जाते हैं। सातवें स्कंद में देखते हैं हम प्रह्लादे कारणे नरसिंह झालासी। तो प्रह्लाद जो है नारद मुनि से ही एक तरह से भगवान के कथा के माध्यम से भगवान के बारे में जानते हैं, तो उनके लिए फिर खुद नरसिम्हदेव आते हैं। तो ये सभी जो प्रभाव है एक तरह से देखा जाए तो भगवान के भक्तों के संगति के माध्यम से हुए हैं। और फिर हम आठवें और नवें स्कंद में अगर जाएंगे तो भगवान के भक्तों के संगति में कौन से गुण नहीं होने चाहिए, इसका भी वर्णन एक तरह से हम देख सकते हैं। जैसे बलि महाराज और शुक्राचार्य एक दूसरे के साथ हैं, संगति में हैं, लेकिन बलि महाराज तो एक बड़ी वैष्णव परंपरा है, प्रह्लाद महाराज जी के पोते हैं, उनके संग में एक तरह से देखा जाए तो शुक्राचार्य है, लेकिन शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि उनके मन में भगवान के प्रति द्वेष है। और नवे स्कंद में हम दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज उनकी कथा है। तो एक तरह से दुर्वास मुनि और अम्बरीश महाराज ये भी एक संग ही है, लेकिन उस संगति में दुर्वासा मुनि अपराध करते हैं। तो भक्तों के संगति में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन से गुण नहीं होने चाहिए, तो इसमें वर्णन आता है कि एक तो भक्तों के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, भक्तों का अपराध नहीं होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि बारहवें स्कंद में वास्तविक परीक्षित महाराज कि हमारी अंतिम समय है तो हमें क्या करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज उसका मूर्तिमंत उदाहरण है कि उनके जीवन की प्राथमिकता क्या थी, जब उनको पता चला कि आने वाले 7 दिनों में मेरा मृत्यु होने वाला है तो साधु संघ, फिर वो अपना पूरा साम्राज्य छोड़ के शुकदेव गोस्वामी का आश्रय ग्रहण करते हैं और वहाँ भागवत श्रवण करते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में हमने देखा कि प्रकृति पुरुष और ईश संगात विलियते। तो प्रकृति ये भगवान की स्त्रीलिंगी शक्ति है और वो भोग्य है, लेकिन भगवान के लिए परम वास्तविक भोक्ता कौन है, भगवान है। तो प्रकृति पुरुष और बाद में हमने महत्वपूर्ण शब्द जिसे कहा है ईश संगात। तो हमारी विपर्य हमारी वास्तविक विस्मृति अवस्था क्या है कि हम खुद को भोक्ता समझते हैं और भोगने का प्रयास करते हैं, यह हमने चर्चा की कि यह हमारी वास्तविक बंधन का कारण है। और फिर इस अवस्था से अगर हमें बाहर उठना है, हमारे चेतना के स्तर को ऊपर उठाना है तो ईश संगात। ईश संगात में हमने देखा कि भगवान के भक्तों का संग, फिर विलियते, फिर हमारी जो वास्तविक समस्या है वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से आज की इस भागवत कक्षा में ये कुछ जो मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुना था उसको पुनरुच्चारित करने का प्रयास किया। अगर कुछ गलती से भूल हुई तो आपसे क्षमा याचना करते हुए, आपके आशीर्वाद की याचना करते हुए यहाँ आज की कथा को हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।